मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं गुरजिंदर सिंह, आपका गांव है महुआना बोडला जिला फिरोजपुर पंजाब से, सुप्रिया सवाल हल्द्वानी उत्तराखंड से, अजय कुमार नालंदा बिहार से और आकांक्षा पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरजिंदर, सुप्रिया, अजय और आकांक्षा, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में आज मुझे किस विषय पर बात करनी चाहिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहूं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में दो उत्तर कौंधेंगे। पहला उत्तर तो ये कौंधेगा कि सर कल आप समझने की टेक्निक पर बात कर रहे थे तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए क्योंकि कल आपने उस पर बात की है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में यह भी उत्तर कौंधेगा कि नहीं सर, कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने त्यागपत्र दिया है और उनके त्यागपत्र की खबरों से आज अखबार रंगे हुए हैं, एडिटोरियल कमेंट लिखे गए हैं, लोग भी आपस में बात कर रहे हैं, तो आज आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर के त्यागपत्र के बारे में ही बात करनी चाहिए मुख्य विषय के अंतर्गत। ये दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों उत्तरों के पीछे तर्क है। पहले उत्तर के पीछे तो तर्क ये है ही कि कंटिन्यूअस में आप समझने की जो तकनीक होती है उसके बारे में बताइए कंटिन्यूअस के रूप में, तो बटने चुरने की आप सही मांग कर रहे हैं। दूसरा यह है कि चूंकि ये घटना इतनी बड़ी है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का त्यागपत्र दे देना, चूंकि ये लेटेस्ट है, कंटेम्परेरी है, ताजी है, तो आज इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि आज इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आया है, तो सर आप इस पर बात कीजिए ताकि हम एडिटोरियल कमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ सके। कल तो ये पुरानी पड़ जाएगी, समझने की तकनीक की जहां तक बात है उसे आप कल कर लीजिएगा क्योंकि आपने कल जो बात की है वो हमारे दिमाग में है, कल आप और आगे बता दीजिएगा। तो दोनों ही बातों के अपने तर्क हैं, दोनों ही बातों के अपने बराबर वजन है, लेकिन इसमें से बट नेचुरल कि मुझे तो एक ही विषय चुनना होगा। और मित्रों, चूंकि मैं नए विषय को एक दिन बासी नहीं करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं आज आप लोगों से मुख्य विषय के अंतर्गत रिजर्व बैंक के गवर्नर के त्यागपत्र पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है मित्रों वो केवल आपके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी का रास्ता तैयार करना मात्र है। इसमें न तो कोई मेरी व्यक्तिगत राय मायने रखती है, न राजनीति मायने रखती है, न अर्थव्यवस्था मायने रखती है, न अर्थशास्त्र मायने रखता है। सिविल सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है केवल यह मायने रखता है, राइट। लेकिन इससे पहले आइए जो एक दो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं हम उन्हें देख लेते हैं। एक खबर विजय माल्या की आपने सुनी, डीडी न्यूज पर भी था कि ब्रिटेन लंदन की जो एक न्यायालय है उसने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के लिए कह दिया है कि इन्हें भारत भेज देना चाहिए, राइट। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो प्रत्यर्पण हुआ है कुछ समय पहले ही, जो मिशेल आए हैं खासकर जो हेलीकॉप्टर के मामले में, तो उसके बाद से ये दबाव बनने लगा था विजय माल्या पर भी कि वो कहने लगे थे कि नहीं, मैं जो बैंकों से मैंने कर्ज लिया है वो मैं दे दूंगा, इस तरह की बातें होने लगी थी। तो अब चूंकि न्यायालय ने कह दिया है तो बटने चुरले कि उनके लिए एक धक्का है, लेकिन मित्रों ये न्यायालय के निर्णय इतने आसान नहीं होते हैं, ये आप यूं समझ लीजिए कि वहां के सेशन कोर्ट ने यह बात कही है। विजय माल्या अभी यदि चाहें तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट भी मान लीजिए कि विजय माल्या के खिलाफ जजमेंट देते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमारे यहां जैसा पैटर्न वहां भी है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नो डाउट कि यह भारत की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। जो दूसरी खबर है, हालांकि ये छोटी खबर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि इसकी चर्चा कर देनी चाहिए, और वो है पेंशन योजना के बारे में। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि पहले जो पेंशन योजना थी, जब आप सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाते थे तो सरकार हर महीने फिर आपको पेंशन देती रहती है जब तक आप जीवित रहते हैं। यहां तक कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है लेकिन आपकी पत्नी जीवित है तो उनको भी पेंशन का कुछ भाग जो आपको मिलता था वो उनको दिया जाता है। तो यह सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार था। बाद में कुछ ऐसी सिफारिशें की गई कि पेंशन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और उसका बोझ सरकारी कोष पर पड़ता है, तो इसके लिए कोई और सिस्टम निकाला जाना चाहिए। तो सिस्टम यह निकाला गया है कि जैसे मान लीजिए मैं नौकरी में हूं तो मैं अपनी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक में जमा कर दूंगा, या एक पेंशन कोष है कह लीजिए कि पेंशन खाता है उसमें जमा कर दूंगा 10%, और मैं जो 10% जमा कर रहा हूं यही 10% सरकार भी मेरे खाते में जमा कर देगी, तो 20% बचत मेरी हो गई। तो इस तरीके से ये बचत होती चली जाएगी और जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन मुझे ये पैसा लमसम मिल जाएगा और उससे उसको इन्वेस्ट करके या बैंक में रख के या जो भी मैं चाहूं उसमें मैं कमाई करता रहूं और सरकार पेंशन नहीं देगी। तो आप यूं कह लीजिए कि सरकार पेंशन के रूप में मेरी सैलरी का प्लस 10% पेंशन का पैसा दे रही है। तो 10% सरकार देती थी और 10% एम्प्लॉय देता था जो नौकरी कर रहा है। अब कुल मिलाकर के खबर यह है कि जो नौकरी करने वाला है वो अपना 10% ही देता रहेगा, लेकिन सरकार ने जो अपना हिस्सा है वो बढ़ा दिया है। आप 10% देंगे, आप और मैं 10% देंगे, सरकार उसकी जगह 14% देगी, 14% देगी। बस ये एक छोटी सी न्यूज है लेकिन आपके दिमाग में ये न्यूज रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा, उसके कारण मैंने ये बात आपके सामने रखी है। मित्रों आइए अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के त्याग पत्र पर। ये क्या है, कैसे है? पहली बात तो देखिए कि जो रिजर्व बैंक है, मैं बहुत ही सामान्य सी भाषा में आपसे बात करूंगा, अर्थशास्त्र की भाषा में बिल्कुल नहीं, ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली हमारे देश का जो आर्थिक स्वास्थ्य होता है उसका डॉक्टर है। उसकी जिम्मेदारी ये देखना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, आप एक व्यक्ति मान लीजिए कि जो अर्थ एक व्यक्ति जिसका नाम अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसको कहीं ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा है या ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है या इसको कहीं शुगर ना हो जाए, अगर शुगर हो जाए तो कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शुगर हो गई है, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत शुगर बहुत कम हो गई है, या कहीं ऐसा नहीं कि इसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, या कहीं ऐसा नहीं कि बहुत हाई फीवर हो जाए। बस इसका ध्यान रखना और ध्यान रखते हुए जरूरत पड़ने पर इलाज करना, ये रिजर्व बैंक का काम है। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर का जो रोल व्यक्ति के जीवन में हो सकता है लगभग वही रोल रिजर्व बैंक का अर्थव्यवस्था के जीवन में है। अब अर्थव्यवस्था का क्या रोल देश के जीवन में है वो अब आप समझ सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक नामक संस्थान है और फिर उसका गवर्नर, वो उसका संचालन करता है, सब कुछ वही है। तो डेफिनेटली जैसे ही अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर इस तरीके से त्याग पत्र देते हैं तो स्वाभाविक है कि पूरा देश सकते में आ जाएगा कि ऐसा क्या हुआ। देखिए स्वाभाविक तौर पर ये जो इतने बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति होते हैं जब त्याग पत्र देते हैं तो अंदरूनी बातों को, विवादों को, या जो भी कारण रहे हों, मतभेद रहे हों या संकट रहे हों, उनको सामने नहीं लाते, गरिमा पूर्ण तरीके से यही कह के अलग हो जाते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है या व्यक्तिगत कारणों से मैं अलग हुआ। इससे पहले आपको मालूम है कि अरविंद सुब्रमण्यम साहब अलग हुए, अरविंद पनगढ़िया अलग हुए, तो उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ले तो आंतरिक मतभेदों को सामने नहीं रखते हैं। लेकिन जो गवर्नर ने अभी इस्तीफा दिया है इसको लेकर लगातार अखबारों में लिखा जा रहा है कि आंतरिक मतभेद के कारण ऐसा हुआ है। आंतरिक मतभेद को अब आप समझिए कि जो रिजर्व बैंक है ये बेसिकली एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसको ऑटोनोमस इसलिए बनाया गया है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिए दो लोग समानांतर रूप से काम करते हैं। एक तो सरकार है, सरकार चुन करके आती है ना, वो जनता की पसंद से बनाई गई है और जनता से कुछ वायदे करके आती है और वो देश की अर्थव्यवस्था, देश की सारे सिस्टम को देखती है, यानी कि देश का नेतृत्व करती है। इसके बाद अलग अलग संस्थान है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, रिजर्व बैंक जो है ना वो अर्थव्यवस्था को देखता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक या चुनाव आयोग देखिए स्वायत्तता है ताकि वो किसी दबाव से अलग होकर के काम कर सके। यूपीएससी स्वायत्त संस्था बनाई गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल स्वायत्त बनाए गए हैं ताकि ये सरकार के नियंत्रण से या दबाव से मुक्त होकर के अपना काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में भी ऐसा ही है, क्योंकि यदि इन पर सरकार का दबाव पड़ा तो सिस्टम फिर विश्वसनीय नहीं रह जाएगा और जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो सरकार सत्ता में है वह इन संस्थानों का उपयोग खुद के लिए करेगी। इसलिए स्वायत्त बनाया गया कि रिजर्व बैंक किसी राजनीतिक दबाव में आकर के कोई ऐसा गलत निर्णय न ले ले जिसका दुष्परिणाम देश पर बहुत भारी हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखबारों में आप देख रहे हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मतभेदों की खबरें सुनने को आपको मिल रही हैं। यानी कि रिजर्व बैंक जो बात करना चाहता है सरकार उस पर दबाव डाल रही है कि नहीं ये न किया जाए। अब वो तो डॉक्टर है, देखिए वो तो पूरे देश के हिसाब से सोचेगी, वो पॉलिटिकल एंगल से किसी चीज को नहीं सोचेगी और उसे सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे देश का हित देखना है। या यूं कह लीजिए कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं इकोनॉमिस्ट हैं वो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, जबकि राजनेता तो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन नो डाउट उनमें कॉमन सेंस बहुत जबरदस्त होता है, वो देश की जरूरतों को समझते हैं। अब उन जरूरतों का हल कैसे हो सकता है ये विशेषज्ञ फैसला करते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इससे पहले भी इसी इन्हीं मतभेदों के कारण कुछ रिजर्व बैंक के गवर्नर से त्यागपत्र दिया है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहां जब से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है तब से किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने त्यागपत्र नहीं दिया है और उसके बाद से ही रिजर्व बैंक के गवर्नर का त्यागपत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो भी गया है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि लिबरलाइजेशन से पहले, उदारीकरण से पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो ज्यादातर हमारे अपने तक ही सीमित रहती थी, दूसरे देशों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता था, थोड़ा बहुत है आयात निर्यात वो चल रहा है। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद तो जो पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ गई है, जुड़ी नहीं गई है, बड़ी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जटिल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर त्यागपत्र देता है तो सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाएगा, क्या बात हो गई, क्यों ऐसा हुआ। और दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उद्योग लगाना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं, बट नेचुरली कि वो थोड़े से सत्ते में आ जाएंगे, वो थोड़ा सा हिचकेंगे, तो इसका जो हमारा विदेशी निवेश है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही और नो डाउट कि छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है जिसमें वित्त मंत्री को जाना है, हमारे वित्त मंत्री जी को जाना है, लेकिन किसी कारण से वित्त मंत्री नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे मंचों पर इनफैक्ट जो वित्त मंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। तो शायद इससे आपको थोड़ा अनुमान लग सके कि यह पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि जो खबरें आ रही थी तनाव की, वो दो चार पांच तनाव के बिंदु है, बस मैं वो आपको बता देता हूं। पहला तो यह है कि रिजर्व बैंक की जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का कुछ हिस्सा वो अपने रिजर्व में रखती है। वो अभी भारत के जो रिजर्व बैंक है, भारत का जो रिजर्व बैंक है उसमें 9.6 लाख करोड़ रुपए हैं। ये बेसिकली उसकी जो पूरी संपत्ति है उसका 26.5% है। इंटरनेशनल लेवल पर ये जो परसेंट है वो 16% है, मतलब दूसरे जो बैंक है वो 16% रखते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई आपके पास 26.5% है, मतलब 10.5% ज्यादा है, तो आप ये पैसा हमको दे दीजिए 3.5 लाख करोड़ रुपए, इसका सरकार अपने ढंग से उपयोग करेगी। तो इसे आरबीआई इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तो इसको उसने सरकार के द्वारा किया गया हस्तक्षेप वो मान रहा था कि नहीं नहीं ये सरकार का हस्तक्षेप है और आरबीआई के लिए जो कानून बने हैं उसमें सेक्शन 7 है, उसमें इस बात की थोड़ी सी व्यवस्था भी है कि सरकार इस तरह से आरबीआई को निर्देश दे सकती है। इसके बाद आप लगातार बैंकों के एनपीए के बारे में आप सुन रहे हैं कि जो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो रिजर्व बैंक ने क्या किया था, क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक रेगुलेट करने वाला बैंक है ना, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक मतलब वो बैंकों का बैंकर है, बैंक है। तो उसने क्या किया कि हमारे जितने भी 21 बैंक है उनमें से 11 सरकारी बैंकों को आदेश दे दिया कि आप जो है नई ब्रांच नहीं खोलेंगे और आप बड़े बड़े कर्ज नहीं दे सकेंगे और डिविडेंड भी नहीं दे सकेंगे। यानी कि जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देते, ये भी नहीं दे सकेंगे। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि ये बैंक संभल सके। सरकार को ये चीज भी पसंद नहीं आ रही थी, नहीं उनका कहना था कि नहीं नहीं ये जो हमारे बैंक हैं इनको छूट देनी चाहिए कि ये कर्ज दें और ये अपने ब्रांचेस खोलें, क्योंकि सरकार पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश के आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेगी। इसी तरह से जो एक सेक्रेटरी की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि पेमेंट रेगुलेटर बनाया जाए। पेमेंट रेगुलेटर यानी कि जो लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं बैंकों को, उनकी सुनवाई के लिए या उनको नियमित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाए। रिजर्व बैंक इसके लिए तैयार नहीं था। रिजर्व बैंक का मामला था कि जो कर्ज दिया जाता है और इसके बाद जो वापस लिया जाता है ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है और वो रिजर्व बैंक ऑलरेडी कर रही है, तो इसके लिए अलग से रेगुलेटर क्यों बनाया जाए, अलग से संस्थान क्यों बनाया जाए, यह भी एक तनाव का कारण था। इसके बाद एनपीए को देखते हुए जो पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंकों का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कड़ा कानून बना दिया था, ये शायद फरवरी वगैरह में, और उस कानून में यह था कि कर्ज देने वाला अगर एक दिन की भी देरी करता है वापस करने में तो उसे डिफॉल्टर मान करके जो बैंक है वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें। कहा यह जा रहा है कि फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और जो बैंक होंगे उनके दबाव में आकर के सरकार ने ढिलाई मांगी कि नहीं भैया आप अपने इस कानून में थोड़ी सी ढिलाई दे दीजिए, इसके लिए भी रिजर्व बैंक तैयार नहीं हुआ। तो इसके नतीजे मित्रों ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर के पिछले काफी समय से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, और शायद अब आप केवल अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी शुक्रवार को बोर्ड की बैठक होनी थी और उससे पहले इन्होंने, हमारे गवर्नर साहब ने, उर्जित पटेल जी ने त्याग पत्र दे दिया है। इस पर डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट लिखे गए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आपको अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे और इस पर अभी लेख भी लिखे जाएंगे और इस पर देश में खूब चर्चा होगी। तो देखते हैं कि किस किस तरह के पॉइंट हमारे सामने आते हैं, लेकिन डेफिनेटली रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस तरीके से त्याग पत्र देना देश के लिए बहुत चिंता की बात है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। इनमें से तीन मित्रों के नाम हैं, राजकुमार जयेंद्र सिंह भट्टी जूनागढ़ गुजरात से और ब्रजेश सोनी अहमदाबाद से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।